पृष्ठ संख्या 36, यशपाल, जन्म सन 1903 ईस्वी, मृत्यु सन 1976 ईस्वी। कहानी होली नहीं खेलता। बैजल ने कहा, मैं होली नहीं खेलता। पूछा, क्यों नहीं खेलता? उसने उत्तर दिया, बस नहीं खेलता। उसके स्वर में खीझ भरी भावुकता इतनी स्पष्ट थी कि सहानुभूति और जिज्ञासा जाग उठी। कुछ उससे पूछकर इधर उधर से पता लिया। मिस्टर कपूर बैंक में अकाउंटेंट हैं। दिन भर बैंक के खातों से सिर मार कर थके हुए घर लौटने पर चाहते हैं बैंक की बातें एकदम भूल जाएं। नाश्ता करते समय वे रेडियो लगा लेते हैं। कुछ ही दिन में मशीन के कर्कश स्वर से भी दिल उबने लगा। मिसेज ज्योत्सना कपूर से वह कुछ गाकर सुनाने को कह देते। पत्नी की नई तर्जें पकड़ते हुए गीत और गाने सिखाने के लिए एक दो बार सप्ताह में सिनेमा भी अवश्य ले जाते। बैंक में प्रायः सभी सिनेमाओं से फ्री पास आते थे। उनके दिन भर के थके दिमाग को सिनेमा में नींद आ जाती। ज्योत्सना का गला अच्छा है, गाने का शौक भी है, परंतु वह उत्साह से न गा पाती। एक आदमी के लिए रोज गाना, और वह भी ऐसा आदमी जो स्वयं कभी न गाए बल्कि मुंह की ओर घूरता रहे। मिस्टर कपूर संगीत में घुल मिलकर बातचीत करने में सुख पाते हैं। ज्योत्सना जैसी सुशिक्षिता और सुस्वरूप पत्नी पाने का उन्हें गर्व है। वह चाहते थे ज्योत्सना संगीत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके और स्वतंत्रता से समाज में मिले जुले। कपूर के घर में मर्दानी बैठक और जनाना अलग अलग नहीं था। मिलने जुलने वालों का परिचय वह पत्नी से भी कराते हैं। गोष्ठी और महफिल उनके यहाँ प्रायः लगी ही रहती हैं। मिस्टर कपूर को एक दिन बैंक में एक विचित्र व्यक्ति से वास्ता पड़ गया। कॉलेज के अध्यापक बैजल ने अपने सेविंग बैंक के हिसाब से कुछ रुपया निकलवाने के लिए एक चेक भेजा था। कॉलेज का चपरासी चेक लौटा लाया था। बैजल स्वयं बैंक पहुंचा। वह बहुत नाराज था। बैंक में उसने अकाउंटेंट मिस्टर कपूर से शिकायत की। चेक का रुपया न दिया जाने की वजह उसके हस्ताक्षर में कुछ अंतर होना बताया गया। पृष्ठ संख्या 37। वैजल ने अकाउंटेंट से प्रश्न किया, एक बात बताइए, 3 बरस से आपके बैंक में मेरा हिसाब है, रुपया निकलवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। इस बीच में यदि मेरे हस्ताक्षर में कुछ अंतर आ जाए तो आश्चर्य की क्या बात? क्या यह अन्याय नहीं है कि आप मेरा भेजा हुआ रुपया तो जमा करते जाएं और लौटाने से इनकार कर दें? बैजल ने कहा, एक और अर्ज है, यदि आपको मेरी तरह लगातार 3 बरस तक अपने गांव से दूर रहना पड़े और 3 बरस बाद घर लौटने पर आपके नौकर आपके किसी पुराने फोटो से आपका चेहरा मिलाकर कहें कि आपकी शक्ल में कुछ अंतर आ गया है और आपको अपनी स्त्री के पास न जाने दें, तो आप क्या करेंगे? दलील मिस्टर कपूर को पसंद आई। बातचीत में मालूम हुआ कि बैजल कॉलेज के दर्शन का अध्यापक है। आलमबाग में कपूर के मकान से दूर नहीं रहता है। चेक का रुपया तो मिल ही गया। इसके साथ ही कष्ट के लिए क्षमा मांग मिस्टर कपूर ने परिचय बढ़ाने के लिए बैजल को संध्या समय उन दिनों की बहुचर्चित फिल्म देखने का निमंत्रण भी दे दिया। बैजल का मिसेज कपूर से भी परिचय हो गया। कपूर ने पूछ लिया, कहिए मिस्टर बैजल, फिल्म पसंद आ रही है? कुछ खास नहीं, बैजल ने उत्तर दिया। सिनेमा में जहाँ देखिए स्त्रियाँ प्रेम करती हैं, केवल सुंदर पुरुषों से, ऐसे पुरुषों से जिन्हें गाना आता हो। कुरूप पुरुष के लिए केवल निराशा ही रह जाती है। इस बात से मुझे उत्साह नहीं होता। इस दर्द भरे परिहास से मिस्टर कपूर की टोन गुदगुदा आ गई। उन्होंने दूसरी ओर बैठी ज्योत्सना को बैजल की राय सुना दी। ज्योत्सना ने मुस्कुराहट से ओठ दबा लिया, परंतु हृदय में एक दबी हुई सी सहानुभूति भी अनुभव की। बैजल का गहरा सांवला मुहासे के दागों से भरा चेहरा उसकी नज़रों के सामने फिर गया। बैजल ने समझ लिया कि उसकी बात उसके ऊपर विद्रूप का संकेत करती हुई मिसेज कपूर के कानों तक पहुंच गई थी। उसे नीरस फिल्म के पर्दे पर कुछ क्षण के लिए दिखाई दे गया ज्योत्सना का साफ गेहुआ चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आँखें, रस भरी नारंगी की फांक के ओठ और उसकी बात में ज्योत्सना के चेहरे पर फिर जाने वाली परिहास की हल्की छाया। बढ़िया साड़ी में लिपटा उसका छरहरा बदन और तुलना में अपना अरुचिकर रूप। यह तुलना उसकी कल्पना में बस गई। उसे याद आ जाता गांव में अपनी स्त्री का मुख। बैजल ने प्रथम परिचय में ही पत्नी के मुख पर दासी का कातर भाव देखा था। वह केवल आज्ञा पालन के लिए ही तत्पर रहती थी। उसका अपना व्यक्तित्व कुछ भी नहीं था। बैजल की बातें कुछ चुभती हुई और चटपटी होती थी। समाज की साधारण धारणाओं, प्रथाओं का विरोध और मजाक करना उसकी आदत थी। पृष्ठ संख्या 38। कपूर कहते, वह स्थूल व्यवहारिक जगत में नहीं बल्कि किताबों की दुनिया में रहता है। कपूर के यहाँ बैजल का आना जाना साधारण बात हो गई। सिनेमा जाने पर अब कपूर नहीं ज्योत्सना बीच में बैठती। पाप का फल फिल्म में सदाचार का उपदेश देते समय संभाषण था, स्त्री पाप और पतन का मूल है। ज्योत्सना ने पूछ लिया, क्यों बैजल साहब, क्या यह बात ठीक है? बैजल ने उत्तर दिया, यदि पाप और पतन अकेले पुरुष का होता हो तो बात ठीक हो सकती। बैजल का ढंग कुछ सनकी सा था। समाज की व्यवस्था का वह अमूल विरोध करता था, परंतु जब ज्योत्सना स्त्रियों की स्वतंत्रता और पुरुषों की समानता की बात करती तो भी वह विरोध करता। बैजल कहता, जब तक स्त्रियां पुरुषों के कंधे का बोझ है, उनकी कमाई खाती हैं, उन्हें पुरुषों की जरूरत पूरी करने की चीज बनकर रहना होगा। उनके गिड़गिड़ाते और मिनमिनाते रहने से कुछ न होगा। बैजल ने कहा, स्त्रियों को कैसी स्वतंत्रता चाहिए? मेरी स्त्री घर पर बैठी है, मैं उसे पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ। क्यों, वह मेरे गले में चक्की के पाट की तरह पड़ी है? ज्योत्सना को इसी बीच से स्त्री जाति का अपमान अनुभव हुआ। उसने जवाब दिया, यह आपका काम है कि आप उन्हें पढ़ाइए लिखाइए और योग्य बनाइए। बैजल चिढ़ गया, जी हाँ, मेरा काम है कि जो व्यक्ति मेरी हुकूमत का विरोध करके मेरी बराबरी करना चाहे, मैं उसकी सहायता करूँ, अपने पैर कुल्हाड़ी मारूँ। मेरा मकान शिकारपुर में नहीं है। ज्योत्सना को इस बात का गर्व था कि वह स्वतंत्र थी। पति के समान ही उसका अधिकार था, परंतु उससे भी अधिक गर्व ज्योत्सना को था सदाचारिणी और साध्वी होने का। पुरुषों के विरुद्ध उसे शिकायत थी कि वह न केवल स्त्रियों पर अनुचित दबाव रखते हैं बल्कि प्रकृति से लंपट भी होते हैं। वह तांगे पर जब भी अकेली बाजार जाती थी, अवश्य ही कोई पुरुष उसकी ओर घूरने लगता। इस विषय पर अनेक बार बहस और नोकझोंक हो चुकी थी। वैजल के मन में ज्योत्सना की निसंकोच आत्मीयता से जो कुछ साहस उत्पन्न होता, वह ऐसी चर्चा से काफुर हो जाता। कपूर की बैठक के कोने में दीवार गिरी पर ज्योत्सना का एक छोटा सा फोटो फ्रेम में मढ़ा रखा था। वैजल कभी बैठक में अकेला होता तो उस फोटो की ओर देखता रहता। एक दिन कपूर के छोटे लड़के नन्नू की शरारत से फोटो फर्श पर आ गिरा और कांच टूट गया। कई दिन बेपरवाही में बीत गए। एक दिन उपेक्षा में ज्योत्सना ने कहा, और सब काम हो सकते हैं, इस फोटो का फ्रेम नहीं बन सकता। बैजल ने फोटो ज्योत्सना के हाथ से ले ली और कह दिया, फ्रेम बन जाएगा। बैजल फोटो ले गया था परंतु लौटा कर नहीं लाया। कपूर और ज्योत्सना को भी फोटो की याद न आई थी। एक दिन कपूर और ज्योत्सना बैजल के यहाँ चाय पीकर गप लड़ा रहे थे तो उनकी नज़र भीतर के कमरे में चली गई। उन्होंने देखा कि ज्योत्सना का फोटो वैजल के पलंग के सिरहाने छोटी मेज पर तांबे के एक नक्काशीदार भारी फ्रेम में रखा था। कुछ दिन पहले तक उस फ्रेम में किसी एक समाचार पत्र से कटा हुआ स्वयं वैजल का चित्र था जो उसके लेख के साथ छपा था। ज्योत्सना ने पूछा, वाह, फोटो में फ्रेम कहाँ से लगवाया? फोटो, यह क्या फ्रेम में नहीं है? बैजल ने उत्तर में पूछा, फ्रेम में जो चित्र पहले था वह कहाँ गया? और ज्योत्सना बैजल के चित्र को मेज पर पड़ी पुस्तकों में टटोलने लगी। वह चित्र मिल भी गया। ज्योत्सना ने उस चित्र को अपने बटुए में रखते हुए कहा, यह बदले में। ज्योत्सना बैजल का चित्र ले गई तो बैजल के पैर मानो पृथ्वी से कुछ ऊपर उठ गए। उसके दिन और रातें कल्पना के मधुर बिहार में बीतने लगीं। वह रात में अपने तकियों को ज्योत्सना समझकर मुस्कुराता हुआ मीठी नींद में सो जाता, परंतु यह उसे कभी सवारी पर भी ज्योत्सना के साथ बैठने का अवसर हो जाता तो दोनों के बीच स्वेज नहर का अंतर बना रहता, जिसमें से सदाचार की धारा सुरक्षित रूप से बहती रहती। मुहर्रम की छुट्टी के कारण बैंक और कॉलेज दोनों ही बंद थे। प्रायः ही छुट्टी से पहली रात बैजल को कपूर के यहाँ भोजन पर निमंत्रण होता था और रात गए तक बैठक जमती थी। बैजल संध्या जब कपूर के यहाँ पहुँचा तो कपूर और ज्योत्सना दोनों ही नहीं थे। बैजल बैठक में बैठ गया और एक अंग्रेजी दुकान का सूची पत्र देखने लगा। कुछ देर में टांगा आया। टांगा से ज्योत्सना झपटती हुई उतरी। घर पर हाजिर ना रहने की माफ़ी मांगने के लिए उसने बताया। रास्ते में बैंक मैनेजर साहब मिल गए थे, उन्होंने इन्हें रोक लिया। अभी आते होंगे, ज्योत्सना ने सूची पत्र बैजल के हाथ से लेकर पूछा। इसमें क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बैजल ने उत्तर दिया। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदने या पा सकने का सामर्थ्य नहीं होता। उनकी तस्वीरें देखकर या उन्हें याद करके ही मन बहला लेना होता है। पृष्ठ संख्या 40। ज्योत्सना बैजल को भीतर आंगन में ले गई। आंगन में छिड़काव करके और गमले धोकर आंगन को ठंडा कर दिया था। ज्योत्सना ने बैजल को आंगन में कुर्सी रखवा कर बैठा दिया। बैजल ने पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? ज्योत्सना बैजल के सामने कुर्सी की पीठ का सहारा लिए खड़ी थी। उसने उत्तर दिया, इमामबाड़े में मुहर्रम की रोशनी होती है ना, बेचारे सदा पास भेज देते हैं, या कभी जाते ही नहीं। आज वहीं गए थे, सोचा था आपको साथ लेकर जाएंगे, परंतु डॉक्टर रशीद गाड़ी लेकर आ गए थे, वह हमें दूसरी ही राह ले गए। आप खड़ी ही रहेंगी? बैजल ने पूछा। नहीं तो, उत्तर दे ज्योत्सना सामने की कुर्सी पर बैठ गई। जुगिया रंग की साड़ी के जरीदार किनारे को सहलाते हुए उसने पूछा, यह साड़ी आपको कैसी पसंद आई? आपका मतलब है किनारा? हाथ के अंगूठे को दांत से काटते हुए बैजल ने पूछा। अच्छा है, मैं कह रही हूँ साड़ी, ज्योत्सना ने खीज दिखाकर कहा। केवल साड़ी की मुझे कोई पहचान नहीं, आप तो सदा टेढ़ी बात कहते हैं, ज्योत्सना ने कहा और कुर्सी से पीठ लगा नई बात आरंभ करने के लिए पूछा। अच्छा यह बताइए, पुरुषों को यों घूरने से क्या मिलता है? इमामबाड़े से अमीनाबाद होकर हम टांगे पर आ रहे थे, बैंक के मैनेजर ने इन्हें रोक लिया। टांगे में मैं अकेली रह गई, बस एक जेंटलमैन साहब ने साइकिल पीछे लगा दी। नाके हिंडोले के चौराहे पर दोनों ओर से मोटरें आ गईं। बाबू साहब बचते बचते एक दुकान के तख्ते से टकराए, पतलून फट गई, खूब मजा आया। मैं हैरान हूँ, देखने से पुरुषों को मिलता क्या है? बैजल ने हाथ के अंगूठे को दांत से काटते हुए उत्तर दिया, आप रोशनी देखने गई थी ना, उसे देखने से क्या मिलता है? आपको इमामबाड़े की रोशनी अच्छी लगती है, किसी को आपके चेहरे पर ही रोशनी दिखाई देती है। ज्योत्सना ने लज्जा से मुंदती हुई आंखों से बैजल को धमका कर कहा, बड़े ओ हैं आप। ओ कौन? सतर्क स्वर में बैजल ने पूछा। टांगे के पीछे साइकिल लगाकर चोट खाने वाला या इमामबाड़े की रोशनी पर रींझने वाला बेजान खिलौनों पर रींझने की मेरी उम्र नहीं, और यदि मैं किसी के पीछे पीछे जाऊं और वह मेरे चोट खाने और मेरी पतलून फटने से खुश हो तो मैं समझूं ऐसे अभिमानी व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। ज्योत्सना ने अभिमान के अभियोग में सतर्क होकर पूछा, अभिमान की इसमें क्या बात? पुरुष को आकर्षित कर सकने की शक्ति पर स्त्रियों का जीवन निर्भर करता है। पुरुषों को आकर्षित हो जाने की निर्बलता पर ही स्त्रियां उन्हें लांछित करती हैं। फर्श की ओर दृष्टि किए बैजल ने उत्तर दिया और ज्योत्सना की आंखों में आंखें डालकर बोला, फर्ज कीजिए, इमाम बाड़े वाले खूब बढ़िया रंग बिरंगी रोशनी करें और फिर रोशनी देखने आने वालों को गालियां और धक्के दें। क्या मतलब? त्योरियां चढ़ाकर ज्योत्सना ने पूछा। मतलब ना समझने का भी गर्व होता है, हिचकते हुए धीमे स्वर में बैजल ने उत्तर दिया। उस अस्पष्ट उत्तर का अर्थ बहुत गहराई तक समझ गुलाबी होती हुई आंखों को नीचे झुका ज्योत्सना ने कहा, हम तो ऐसी जगह कभी न जाएं, हमें तो उन्होंने स्वयं पास भेजे हैं। ज्योत्सना को टोक कर बैजल बोला, और आप पास देना पसंद नहीं करती? ज्योत्सना ने बैजल के विद्रूप से अनुभव हुई सिराहन को छिपाने के लिए साड़ी का आंचल खींचकर आंखें गमलों की ओर घुमा दी। बैजल के संकेत की पहुंच से एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाने के लिए उसने कहा, आपकी तो बातों का मतलब समझना ही मुश्किल है। बैजल ने पूछा, क्या अनुचित बात कह दी मैंने? दृष्टि सामने कर ज्योत्सना ने पूछा, यह मैंने कब कहा? परंतु पुरुषों का स्त्रियों को तंग करना क्या उचित है? न समझने की जो मजबूत दीवार ज्योत्सना अपने चारों ओर खड़ी कर लेना चाहती थी, बैजल उस पर आघात करने के लिए अपना संपूर्ण साहस एकत्र करके बोला, सड़क किनारे के वृक्षों को तो पुरुष तंग नहीं करते, न वे बिजली के खंभों को घूरते हैं। पुरुषों को आकर्षित करने का सब यत्न करके उन पर तंग करने का इल्जाम लगाना कितना बड़ा अभिमान और अन्याय है। ज्योत्सना इस बात को समझने से अवश्य इनकार कर जाएगी, यह सोच व्याकुल हो बैजल बोला, यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण में स्त्री का काम चाहने योग्य वस्तु बनकर पुरुष को निमंत्रण देना है और पुरुष का काम है उसे पाने के लिए यत्न करना। बैजल की स्पष्ट बात से ज्योत्सना की त्वचा चिनचिना उठी। नारी होने के अहंकार में पुरुष की व्याकुलता का रसास्वादन और अधिक करने के लिए उसने कहा, परंतु स्त्रियां तो पुरुषों को तंग नहीं करती। पृष्ठ संख्या 42। बैजल ने अपनी कुर्सी पर आगे झुककर पूछा, क्या स्त्रियां पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती? ज्योत्सना ने गंभीर तटस्थता से कहा, स्त्रियां पुरुषों के पीछे कब भागती हैं? बैजल हंस पड़ा, क्षमा कीजिए, स्त्रियों का तो दावा है कि जैसा प्रेम और प्रेम में बलिदान स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष कभी नहीं कर सकते। हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है। ज्योत्सना ने दावे को स्वीकार किया। बैजल ने मुस्कुराहट रोकने के लिए होंठ दबाते हुए पूछा, प्रेम करती हैं? प्रेम में बलिदान करती हैं, परंतु आकर्षित नहीं होती। बिना आकर्षण के प्रेम कैसे होता है? ज्योत्सना ने अपनी झेप छिपाने के लिए तुरंत जवाब दिया, स्त्रियां पुरुषों की तरह सब जगह प्रेम करने के लिए बावली नहीं रहती। उन्हें जहाँ प्रेम करना चाहिए वहाँ करती हैं। ज्योत्सना कहने को तो कह गई, परंतु ध्यान आ गया बैजल की भावुकता का। कहीं वह इस बात को व्यक्तिगत रूप में समझ कर रूठ न जाए। उसने बैजल की ओर आत्मीयता भरी आशंकित दृष्टि से देखा। बैजल ने ज्योत्सना की कृपा तरल दृष्टि की उपेक्षा कर तीखे विद्रूप से उत्तर दिया, जरूर, कहाँ प्रेम करना चाहिए और कहाँ नहीं? भगवान के यहाँ से इस बात का आदेश स्त्रियों के पास आ जाता होगा और पुरुषों के लिए ऐसा कोई संदेश आ नहीं पाता। या कहिए, स्त्रियों को जहाँ ढकेल दिया जाता है, अपनी दासता के कारण वहीं प्रेम का नाटक करने लगती हैं। पुरुषों में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता या निर्भयता है, इसलिए वे अपनी इच्छा से प्रेम करने की चेष्टा कर लंपट बन जाते हैं। क्यों साहब, प्रेम आज्ञा से किया जाता है या इच्छा से? आज्ञा से किए जाने वाले प्रेम को प्रेम नहीं, दास्ता ही कहना उचित होगा। मेरी राय में मजबूर होकर आयु भर प्रेम करने से अपनी इच्छा से क्षण भर प्रेम कर लेना अधिक अच्छा है। वह क्या कहता चला जा रहा है, यह ध्यान आते ही बैजल चुप हो गया। ज्योत्सना के चेहरे पर रक्त के वेग की उष्णता छा रही थी। न समझने की बात अब भी वह किस तरह कहे। उसका सिर मधुर मूढ़ता में घूमता जा रहा था। उसी समय छोटा लड़का नन्नू दौड़ा आया। ज्योत्सना के घुटने से लिपट कर ठुनकते हुए उसने शिकायत की, माँ जी, हमें सिनेमा नहीं ले गए। बैजल के प्रबल आक्रमण से आश्रय पाने के लिए ज्योत्सना निसहाय की भांति नन्नू से चिपट गई। पुत्र को हृदय से लगा लेने के लिए उठाकर गोद में खड़ा कर लिया। गीली मिट्टी से सने बच्चे के जूतों से जरीदार साड़ी खराब हो जाने की भी सुध ना रही। पृष्ठ संख्या 43। ज्योत्सना ने बच्चे के गाल में गाल सटा कर कहा, छोटे छोटे राजे बेटे कहीं सिनेमा जाते हैं? नन्नू ने माँ के स्नेह उद्गार से छूटने के लिए छटपटाते हुए कहा, हाँ, रज्जू भैया को चाची जी सिनेमा ले जाते हैं। ज्योत्सना ने बैजल से आड़ बनाए रखने के लिए नन्नू को बाहों में समेट कर समझाया, रज्जू भैया तो स्कूल जाते हैं, जब नन्नू बाबू स्कूल जाएंगे तो चाचा जी सिनेमा भी ले जाएंगे। उसने बैजल की ओर देखे बिना ही पूछ लिया, क्यों बैजल साहब, आप नन्नू बाबू को भी सिनेमा ले जाएंगे ना? बैजल उत्तर न दे सका। वह अपने असंतोष को केवल मौन रहकर ही प्रकट कर सकता था, शब्द उपयुक्त न होते। ज्योत्सना ने बैजल के सम्मुख आत्मसमर्पण के लिए व्याकुल मन को वश में करने के लिए नन्नू के छोटे छोटे हाथों से अपनी आँख मूंदते हुए कहा, आप बैठिए, आती हूँ, और उठकर भीतर चली गई। बैजल को अनुभव हुआ ज्योत्सना उसके भावों को दांत तले कुचल देने के लिए ही चली गई थी। वह कुछ बोल न सका, परंतु उस चोट का प्रतिवाद न करना भी असह्य था। उसने नौकर को पुकार कर कहा, साहब से कह देना हम जा रहे हैं, हमने बहुत इंतजार किया। नौकर घर में बैजल की स्थिति जानता था। उसने विनय की, साहब अभी आते होंगे, बैठिए, खाना तैयार है। उसे रुकते न देख नौकर ने फिर कहा, बीवी जी अभी आती हैं, उन्हें कह दो आप जा रहे हैं। ज्योत्सना जॉर्जेट की सफ़ेद साड़ी पहनकर आई थी। वह जानती थी सफ़ेद साड़ी बैजल को पसंद थी। बैजल के चले जाने की बात सुनकर उसके पांव तले से धरती खिसक गई। यह आघात बैजल के मर्मभेदी शब्द बाड़ों से कहीं अधिक प्रबल था। वह मुंह को आता हृदय संभाल बड़ी कठिनाई से आंसू रोककर नौकर पर बरस पड़ी, तुमने क्यों जाने दिया? वह यह भी भूल गई कि नौकर हाथ थाम कर तो अतिथि को नहीं रोक सकता था। ज्योत्सना बहुत विक्षिप्त थी। उसी समय मकान के दरवाजे पर मैनेजर की मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। कपूर भीतर उतावले कदम रखते हुए आए। विस्मय से उन्होंने पूछा, बैजल नहीं आया? कपूर यह जानकर बैजल आया था और चला गया, पत्नी पर बिगड़े बिना न रह सके। क्रोध में स्वर ऊंचा कर उन्होंने कहा, आखिर तुमको पहले भेज किस लिए दिया था? तुम उसे 15 मिनट नहीं रोक सकी? किसी से यूं बात कर सकने की तमीज भी तुमको नहीं? उसे खाने पर बुलाया था, उसके नौकर ने खाना भी नहीं बनाया होगा। इतनी भी अकल तुमको नहीं? तुम 10 मिनट ठहर कर ही कपड़े बदल लेती, कौन प्रलय हो जाता? पृष्ठ संख्या 44। ज्योत्सना की आंखों और हृदय से उमड़ते बादल बरस पड़े। आंचल में मुंह लपेट कर वह पलंग पर जा लेटी और जोर से रो उठी। उसका मन चाह रहा था कि पति उसे फटकारे और वह जी भर कर रो सके। इस रोने का कारण कपूर के कठोर शब्द नहीं, बैजल का रूठ कर चले जाना था और उसे नाराज कर देने वाली उसकी अपनी अक्षमता थी। उसका मन चाहता था धूल में मिल जाए, पृथ्वी फट जाए और वह उसमें समा जाए। चिर दिन से इकट्ठे हुए अतृप्त दबे भाव और मानसिक यंत्रणा उमड़े चले आ रहे थे। कपूर ने नौकर को तुरंत साइकिल निकालने के लिए कहा और पांव पटकते हुए बैजल को बुला लाने के लिए चले गए। ज्योत्सना आंचल में मुंह लपेटे रोती रही। कपूर को बैजल अपने घर पर मिला नहीं। लौट कर कपूर और भी बिगड़े। कुछ देर बाद वह एक बार और बैजल के यहाँ जाने को तैयार हुए, परंतु विचार आया, जाने वह अभी लौटा है या नहीं? शायद किसी होटल में चला गया है या किसी दोस्त के घर। हो सकता है चिड़ियाघर की सुनी अंधियारी सड़कों पर ही घूम रहा हो। उस समय जाना व्यर्थ समझ कपूर चुप बैठे रहे। ज्योत्सना निरंतर रोती रही। कपूर ने रात में बहुत विलंब से भोजन किया। भोजन पेट में पहुंचने से उतना क्रोध दब गया। वह ज्योत्सना को मनाने लगे, शब्दों के असफल हो जाने पर दूसरे उपाय किए। पहले भी ऐसा हो चुका था। जिस सीमा पर पहुंचकर ज्योत्सना का मन समाप्त हो जाता था, आज वहाँ कपूर के प्रयत्नों की हार नहीं। ज्योत्सना का शरीर सभी संकेतों के लिए शिथिल और निश्चेष्ट बना रहा। वह सिसकियां लेती रही क्रोध में। ज्योत्सना को बहुत अधिक डांट देने के लिए कपूर को पश्चाताप होने लगा। उन्होंने निश्चय किया, सुबह बहुत जल्दी उठ बैजुल को बुला लाएंगे। ज्योत्सना सिसकियां लेती हुई सोचती रही क्या करे। उसने सब कर्तव्यों के साथ प्रेम का कर्तव्य भी पूरा किया था, परंतु यह आकर्षण स्वयं ही उठ रहा था। इस प्रेम को क्या वह रोक सकती थी? कपूर बहुत विलंब से सोए थे। सुबह नींद भी देर में खुली। तब तक यथासंभव शीघ्रता से हजामत कर और कपड़े पहनकर बैंक की राह में बैजल के यहाँ पहुँचे तो वह कॉलेज जा चुका था। ज्योत्सना ने रोने से सूजी हुई आँखों को गुलाब जल से धोया। वह घर के अनेक कामों में व्यस्त हो जाने की चेष्टा कर रही थी, परंतु उसे हर बार हर काम और हर स्थान में बैजल की नाराजगी दिखाई देती। वह करती तो क्या, प्रेम और आकर्षण की जो मीमांसा बैजल उसके सामने कर गया था, उसके शब्द निरंतर कानों में गूंज निष्ठुरता, तिरस्कार और दासत्व का अभियोग लगा रहे थे। ज्योत्सना के लिए वह मनोविज्ञान नहीं, बैजल का व्याकुल आत्मनिवेदन था और वह निरुपाय थी स्वीकार कर लेने में और इनकार कर देने में भी। आयु पृष्ठ संख्या 45। भर प्रेम का कर्तव्य निभाने के बाद अब प्रेम स्वयं हृदय में उठकर उसे भयभीत और व्याकुल कर रहा था। कपूर ने 4 दिन में 3 बार ज्योत्सना को लेकर और 1 बार अकेले बजल के यहाँ चक्कर लगाए। संयोग से बजल मिला नहीं। होली से पहली संध्या पर कपूर और ज्योत्सना बहुत देर तक उसके घर बैठे रहे थे। रात 11:30 बजे तक भी बजल घर न लौटा था। कपूर ने समझ लिया सिनेमा के दूसरे शो में चला गया होगा। घर लौटने के लिए उठते हुए उन्होंने कहा, सिनेमा ही जाना था तो कम वक्त पास क्यों नहीं ले गया। ज्योत्सना ने पति के अज्ञान के प्रति अपनी निराशा प्रकट करने के लिए सोचा, हाँ यदि नाराजगी का मूल्य 2-4 रुपये होता। ज्योत्सना को घर लौटते समय याद आ रही थी कुछ दिन पहले की बात। होली के आने वाले हुल्लड़ की चर्चा होने पर उसने आशंका से बैजल को संबोधन कर पूछा था, क्या आप भी होली खेलते हैं? बैजल ने गंभीर अर्थपूर्ण निगाहों से उत्तर दिया था, वाह मैं तो इसकी प्रतीक्षा कब से कर रहा हूँ। उस दिन तो सब कसूर मुआफ होंगे। ज्योत्सना को रोमांच हो आया था। सिर हिला और ओंठ दबाकर उसने मुस्कुरा दिया था। बैजल की इस बात की याद से हृदय मुंह को आने लगा। कल होली है। मुआफी के अधिकार से अपराध करने की धौंस देने वाला कहाँ है? दांतों से ओट दबा ज्योत्सना ने उमड़ते हुए आंसुओं का घूंट भर लिया। कपूर ने प्रतिज्ञा की, सुबह उठते ही बहुत सा रंग ले बैजल के यहाँ जा। उसका मुंह लाल और हाथ पैर नीले कर कान से पकड़ कर लिवा लाएंगे और अच्छी तरह उसकी खबर ली जाएगी। जब सुबह नन्नू के ओली ओली चिल्लाने और रज्जू के बाल्टी पटकने के शब्द से कपूर की आंख खुली, पड़ोस के लोग रंग और पिचकारी ले उनके आंगन में आ गए थे। कपूर को बैजल की याद सबसे पहले आई, परंतु आह्लाद के उस कोराहम में दब गई। पड़ोस के लोगों के बाद बैंक के लोग और उसके बाद डॉक्टर साहनी, वकील निगम और लाला राम प्रसाद आ गए। जाने कितनी दफ़े मिठाई आई और कितनी दफ़े पानदान में चूना और कत्था समाप्त हुआ। 1 बज गया और वह लोग बैजल के यहाँ ना जा सके। लखनऊ में होली का रंग 1 बजे बंद हो जाता है। 1 बजे के बाद लाल हरे रंग से सराबोर कपड़े में बैजल के घर कैसे जाना होता। नहा धोकर कपूर ने टांगा मंगवाया और बैजल से मिलने के लिए चल दिए। सूखा रंग साथ ले लिया था। बैजल के घर पहुंचकर देखा, होली के पागलपन का कोई चिन्ह नहीं था। नौकर चादर ताने रसोई घर में सो रहा था। बैजल अपने सोने के कमरे पृष्ठ संख्या 46 में रात के धारीदार कपड़े पहने सड़क की खिड़की की ओर मुंह किए सिगरेट पीटता हुआ गा रहा था, इश्क में यूं ही बेशकूं कटती हैं जिंदगियां। कपूर ने रंग की पुड़िया खोलते हुए कहा, वाह रे शैतान, 20 दफ़े तुम्हारे यहाँ चक्कर लगाए और तुम होली के दिन भी ना आ सके। वह कुछ कह सके इसके पहले ही कपूर ने रंग उसके मुंह और बालों में भर दिया। ज्योत्सना देख रही थी। बैजल ने वह सारा दिन सिगरेट उड़ाते और इश्क की बेसकूनियों का रोना रोते बिताया था और उसे याद आ रहा था उसका होली के दिन मुआफ़ी के अधिकार से अपराध करने का अरमान। होली के दिन तो सब नाराजगियां खत्म हो जाती हैं। ज्योत्सना मुस्कुराती हुई आँखों से आगे बढ़ गई। मधुर अपराध की क्षमा जबरन लेकर बैजल की सब बेसकूनियों को शांत कर देने के लिए उसने अपने हाथों बैजल के चेहरे पर गुलाल मलकर एक हल्की चपत भी लगा दी। बैजल ने भी मुस्कुराने का यत्न करते हुए दोनों के चेहरों पर रंग मला और फिर इस बीच में आकस्मिक अड़चने आ जाने के कारण उनके यहाँ ना जा पा सकने की सफाई दी। कपूर, ज्योत्सना और बैजल साथ बैठे बातें कर रहे थे। ज्योत्सना देख रही थी, बैजल उसकी ओर से दृष्टि बचा लेता था। बैजल की उस नाराजगी से उसका मन गुदगुदा उठता था। वह मुस्कुरा रही थी, यह नाराजगी अभी दूर हो जाएगी। कपूर ने थक कर एक सिगरेट और चेहरे की त्वचा पर सूखे रंग की रगड़ से अनुभव होने वाली चिनचिनाहट दूर करने के लिए कहा, नहाएंगे? बैजल के नौकर ने कपूर के लिए मालिक के बक्स से कमीज, धोती और तौलिया निकाल दिया। हुक्म पाकर वह कपूर के यहाँ से ज्योत्सना के लिए साड़ी लेने चला गया। कपूर के नहा चुकने की प्रतीक्षा में वैजल सिगरेट पीता हुआ कमरे में टहलने लगा। ज्योत्सना उसकी शेष नाराजगी की ओर देख मुस्कुरा रही थी। समीप आकर उसके कंधे से माथा सटाए हुए आंखें उठाकर उससे पूछा, कहिए होली के दिन कौन कुसूर करने का अरमान था इतनी नाराजगी? बैजल ने बिल्कुल भाव शून्य चेहरे और स्वर में उत्तर दिया, मैं समझा नहीं। उसने सिर बैजल के सीने से लगाकर हाथों की अंगुलियों को तोड़ते हुए द्रवित स्वर में कहा, नाराजगी खत्म करो। कहते थे आज के दिन सब कसूर मुआफ होते हैं। जीवन में किसी क्षण से संतोष, उसका गला रुंध गया। पृष्ठ संख्या 47। बैजल दशहरे के रावण की भांति निश्चल रहा। उसने अंधमुनी आँखों की कठोर दृष्टि ज्योत्सना के चेहरे पर डालकर धीमे परंतु रूखे स्वर में कहा, संतोष अपनी ही वस्तु से होना चाहिए, पराई चीज से नहीं। ज्योत्सना का चेहरा लाल हो गया। स्त्री पुरुष की संपत्ति होती है, उसने घूर कर पूछा। होती है, निश्चल रहा जब वैजल ने उत्तर दिया, पुरुषों को परस्पर एक दूसरे की संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। ज्योत्सना को जान पड़ा सिर में चक्कर आ जाने से वह गिर पड़ेगी। जल्दी जल्दी सांस लेती हुई वह कुर्सी पर बैठ गई। माथा उसने कुर्सी की पीठ पर टिका लिया। बैजल सिगरेट पीता हुआ बाहर बरामदे में टहलने लगा। कपूर ने गुलसखाने से निकल कर पुकारा, अरे कंघी कहाँ है? और ज्योत्सना की ओर देख कर पूछा, तुम्हारी साड़ी आ गई, नहा डालो। तीखे स्वर में ज्योत्सना ने उत्तर दिया, नहीं, टांगा मंगाइए। विस्मय से कपूर ने पहले एक की ओर फिर दूसरे की ओर देख कर पूछा, क्या फिर लड़ाई हो गई? ज्योत्सना ने फर्श की ओर आंख झुकाकर क्रुद्ध स्वर में उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हारे दोस्तों की जूतियां खाने के लिए हूँ? रुलाई के आवेग के कारण मुंह और साड़ी के आंचल में लपेट कर फफक फक कर रोने लगी। कपूर ने परेशानी से वैजल की ओर देखा, हुआ क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। बैजल ने सिगरेट का टुकड़ा फेंक कर उत्तर दिया और गुलासखाने में जा किवाड़ बंद कर लिए। बैजल नहाकर निकला तो कपूर और ज्योत्सना उसके यहाँ से जा चुके थे। ज्योत्सना के घर से आए साड़ी ब्लाउज मेज पर पड़े थे। नौकर विस्मित और भयभीत भाव से एक ओर खड़ा था। तब से बैजल होली नहीं खेलता।